पृष्ठ संख्या 95, अध्याय 5, सांगीतिक संस्थाओं में संगीत संबंधी उपादानों का विवेचन। शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन। भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता का अवलोकन करने पर यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि शिक्षा का शुभारंभ गुरुकुल पद्धति द्वारा हुआ। इस पद्धति के अंतर्गत सभी विषयों का शिक्षण दिया जाता रहा, जिसके प्रधान परिचायक हमारे महाकाव्य तथा शिक्षा ग्रंथ हैं। इस समय के दौरान भारतीय संगीत को मुख्य रूप से ईश्वरोपासना का सर्वश्रेष्ठ माध्यम स्वीकार किया गया। धीरे धीरे विदेशियों के आक्रमण के फलस्वरूप सभ्यता के बहुमुखी दिशाओं में परिवर्तन हुए। गुरुकुल पद्धति द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत को विकसित, पल्लवित और समृद्ध होने का अवसर तो मिला, परंतु मध्यकाल में इन परिवर्तित परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप गुरुकुल पद्धति का स्थान घराना परंपरा ने ले लिया। घराना परंपरा की मुख्य उपलब्धि यह रही कि इस परंपरा द्वारा भारतीय संगीत को उच्च कोटि के कलाकार मिले, जिन्होंने मंच प्रदर्शन की परंपरा को विकसित किया तथा निरंतर साधना करते रहे। किंतु इन उपलब्धियों के साथ साथ कुछ ऐसी त्रुटियां भी सामने आईं, जिसके कारण समाज में भारतीय संगीत को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा, जिससे शास्त्रीय संगीत समाज के विशिष्ट व्यक्तियों से दूर होता गया तथा साधारण व्यक्ति की पहुंच से बाहर। परिणाम स्वरूप संगीत बादशाही दीवारों में बंद होकर रह गया। 19वीं शताब्दी में इस दिशा में एक नवीन क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिसका श्रेय विष्णुद्वय एवं अन्य विद्वानों को जाता है, जिनके सफल प्रयासों से समाज में शास्त्रीय संगीत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा और शिक्षण संस्थाओं में अन्य विषयों के समान संगीत को भी एक विषय के रूप में स्वीकार किया गया। वर्तमान समय में संगीत की प्रगति अथवा प्रचार प्रसार को देखकर यह विश्वास होता है कि आने वाले समय में संगीत परिवर्धित और परिष्कृत हो जाएगा। पृष्ठ संख्या 96। एक समय वह था जब समाज में संगीत का प्रचार व्यापक रूप से नहीं था, बल्कि संगीत केवल थोड़े से व्यवसायिक व्यक्तियों तक ही सीमित था। आज अगर संगीत के प्रचार प्रसार, प्रगति व स्तर की बात की जाए तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि संगीत का क्षेत्र उत्तरोत्तर विकसित हुआ है। यद्यपि बीच में शास्त्रीय संगीत के विकास में बाधाएं उत्पन्न हुई, लेकिन आज संगीत जनसाधारण तक पहुंचा है, जिसमें विशेष भूमिका हमारी शिक्षण संस्थाओं की रही है। इससे पूर्व जब शिक्षण संस्थाओं में इस विषय का प्रवेश नहीं हुआ था, तब संगीत और संगीतकारों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। लोग गायक वादक को सुनना तो पसंद करते थे, किंतु उनके व्यवहारिक जीवन से घृणा करते थे। संगीत कला ने धीरे धीरे वृहद रूप धारण किया और आज वह शैक्षिक संस्थाओं के पाठ्यक्रम में निर्धारित हो रही है। छात्र छात्राएं, बल्कि आज तो वैवाहिक स्त्री पुरुष भी कई संगीत संस्थाओं में संगीत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जहां तक इन शिक्षण संस्थाओं के योगदान की बात कही जाए तो वह अतुलनीय है। इन शिक्षण संस्थाओं ने संगीतकारों को समाज में उच्च स्थान दिलवाने, जनसाधारण को संगीत की सुलभता प्रदान करने और कलाकारों की आर्थिक सहायता करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। आज संगीत शिक्षकों को भी समाज में अन्य शिक्षकों की भांति ही सम्मान प्राप्त है। आर्थिक दृष्टि से भी संगीत शिक्षकों का जीवन सुखमय है। आज संगीत एक वैकल्पिक विषय के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष इन शिक्षण संस्थाओं में क्रियात्मक और शास्त्र परीक्षाएं संपन्न होती हैं। शिक्षक की ही दूसरी शिक्षण संस्थाओं में परीक्षक बनकर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें सम्मान व उचित पारिश्रमिक भी दिया जाता है। शिक्षण संस्थाओं में संगीत के क्रियात्मक पक्ष के साथ साथ शास्त्र पक्ष को भी प्राथमिकता दी जाती है, जिस कारण आज अनेक ग्रंथों की रचना का कार्य सक्रिय रूप से चल रहा है। प्राचीन ग्रंथों पर समीक्षाएं व टीकाएं लिखी जा रही हैं। अनेक सांस्कृतिक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी हो रहा है, जिससे संस्कृत से अनभिज्ञ व्यक्ति भी उसे पढ़कर लाभान्वित हो सके। इस ओर सर्वप्रथम पंडित भातखंडे जी और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने उल्लेखनीय प्रयास किए तथा कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। विद्यार्थी वर्ग को इन ग्रंथों की सहायता से ही शिक्षा ग्रहण करने में भी सुविधा हुई है। इन शिक्षण संस्थाओं की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभा को उजागर करने की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है। विद्यार्थियों को मंच प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जाता है। उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिससे शिक्षार्थियों में कलाकार बनने की जिज्ञासा को बढ़ावा मिलता है। पृष्ठ संख्या 97। विद्यार्थियों में शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए समय समय पर इन शिक्षण संस्थाओं में संगीतज्ञों को प्रदर्शित करने हेतु आमंत्रित किया जाता है, जिससे उनके मन में भी कलाकार बनने का मंच प्रदर्शन की प्रेरणा को प्रोत्साहन मिल सके। विशेषकर विद्यालयों में तो विद्वान शिक्षकों को विजिटिंग प्रोफेसर के लिए बुलाए जाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रतिदिन उनका 15-20 दिन तक तो 2 या 3 घंटे का भाषण एवं प्रदर्शन रखा जाता है। विद्यार्थियों की प्रत्येक समस्या का समाधान, चाहे वह क्रियात्मक पक्ष से संबंधित हो अथवा शास्त्र पक्ष से, किया जाता है। इससे विद्यार्थियों की अपने विषय के प्रति जानकारी बढ़ती है। किंतु प्रत्येक वस्तु के 2 पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। उसी प्रकार संगीत शिक्षण संस्थाओं की जहां एक ओर असंख्य उपलब्धियां हैं, वहीं न्यूनताएं भी कम नहीं हैं। एक समय था जब शिष्य को घराना पद्धति से शिक्षण दिया जाता था। शिष्य गुरु के पास रहकर ही शिक्षा ग्रहण करता था। गुरु की तसल्ली होने पर ही शिष्य अपनी कला का प्रदर्शन करता था। एक राग को अच्छी तरह से सीखने के उपरांत ही दूसरा राग सिखाया जाता था। आज स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। शिक्षण संस्थाओं में पीरियड अवधि मात्र 40-50 मिनट होती है। विद्यार्थियों की संख्या को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास केवल 10 से भी कम मिनट आते हैं। गायकी को इतने समय में सीख पाना कहाँ संभव है। दूसरी समस्या है, पाठ्यक्रम के अनुसार एक विद्यार्थी को एक वर्ष में 20-25 राग करने होते हैं, जिसके अंतर्गत ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, ठुमरी आदि सम्मिलित होते हैं। यद्यपि केवल ख्याल को सीखने के लिए सालों अभ्यास की साधना चाहिए, तो इतनी शैलियों को एक साथ सीख पाना कहाँ संभव है। लेकिन जैसे तैसे करके उनके पाठ्यक्रम उन्हें रटा दिए जाते हैं। ख्याल का अर्थ ही जब कल्पना है, तब उसके साथ रटना शब्द कुछ सार्थक प्रतीत नहीं होता। जब विद्यार्थी डिग्री उत्तीर्ण कर बाहर आता है, तब माना डिग्री से कुछ नहीं होता। उसके शिक्षा का स्तर भी विशेष सराहनीय नहीं होता। जब यही विद्यार्थी प्राध्यापक के पद पर नियुक्त होते हैं, तब अपने विद्यार्थियों को भी वो कुछ नहीं सिखा पाते, बल्कि उनके गलत मार्गदर्शन से विद्यार्थी भटक जाते हैं। प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी तो विशेष रूप से ह्रास होते हैं। आज राजनीति भी इन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कर गई है। शिक्षकों की नियुक्ति के समय उनकी गुणवत्ता तो एक ओर रख दी जाती है, उनके स्थान पर ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर दिया जाता है जिसकी सिफारिश होती है, किंतु विषय के बारे में भी बहुत ही न्यून मात्रा में जानकारी होती है। हमारे शिक्षण संस्थाओं के लिए यह भी एक विचारणीय विषय बन रहा है कि दिन प्रतिदिन विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है। इसका मुख्य कारण है शिक्षण संस्थाओं के दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। शिक्षण संस्थाओं की पढ़ाई समाप्त होने के पश्चात विद्यार्थी केवल शिक्षक के पद के लिए ही आवेदन पत्र भरने योग्य होता है। उसको ऐसा किसी प्रकार का शिक्षण नहीं दिया जाता जिससे वह किसी अन्य क्षेत्र में जा सके। पृष्ठ संख्या 98। प्रत्येक विश्वविद्यालय में आज शोध कार्य चल रहा है और विद्यार्थी भी इस ओर सक्रिय हैं। आज MPhil कक्षा के लिए विद्यार्थियों को लघु शोध प्रबंध और PhD के लिए शोध प्रबंध लिखना अनिवार्य है। शिक्षण संस्थाओं में अन्य विषयों की भांति ही शोधार्थी पीएचडी को डिग्री प्राप्त करते हैं और समाज में सम्मानित होते हैं। शोध कार्य से एक तो प्राचीन अव्यवस्थित सामग्री को व्यवस्थित किया जा रहा है, दूसरा कुछ नई खोज का कार्य भी हो रहा है। इससे प्राचीन सामग्री को शुद्ध रूप देने और तर्कसंगत स्वरूप निश्चित करने का कार्य भी सुचारू ढंग से हो रहा है। कई नए नए विषयों का प्रादुर्भाव हो रहा है। संगीत के साथ अन्य विषयों के संबंध को प्रमाणित करने हेतु नवीन प्रयोग भी उल्लेखनीय हैं। आप अनेक विषयों जैसे संगीत एवं मनोविज्ञान, संगीत से मानसिक चिकित्सा, संगीत का वनस्पति पर प्रभाव, संगीत की पशु पक्षियों पर प्रभाव इत्यादि पर शोध प्रबंध लिखे जा रहे हैं। अच्छे शोध प्रबंध भी प्रकाशित हो रहे हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि शास्त्र के महत्व को भी विद्वानों ने समझा है। जितना भी लेखन का कार्य हो रहा है, हमारी भावी पीढ़ियां अवश्य ही लाभान्वित होंगी, किंतु इस समस्त कार्य पर आज सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं और संगीत संबंधी शोध कार्य की दुर्दशा का आभास भी मिलता है। यह बात बहुत खेद की है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो एक से अधिक विश्वविद्यालयों में हो रहे हैं, उस पर या तो शोध प्रबंध चल रहा है या वो स्वीकृत हो चुके हैं। तब और भी अधिक आश्चर्य होता है जब एक विषय को थोड़ा बहुत बदलकर उसी विश्वविद्यालय में किसी दूसरे शोधार्थी को दे दिया जाता है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें विषय के नाम में तो अंतर है किंतु विषय वही रहता है। यह किसी भी प्रकार से उचित बात नहीं है, क्योंकि एक साथ दो व्यक्तियों का एक विषय पर कार्य करना मूल उद्देश्य के एकदम विरुद्ध है। रेंगना तो संभव है, बल्कि एक स्वस्थ परंपरा का द्योतक है कि एक विषय पर एक कार्य के स्वीकृत हो जाने पर कोई दूसरा शोधार्थी उसी विषय पर एकदम नई दृष्टि से शोध कार्य करना चाहे तो उसकी स्वीकृति उसे दे दी जाए। आज कुछ विषय ऐसे भी पंजीकृत किए जाते हैं जिनका शोध के क्षेत्र में कोई विशेष महत्व भी नहीं होता, जैसे कुछ कवियों के नाम पर शोध प्रबंध लिखा जाना। एक बार तो उनके ऊपर काम किया जाना न्यायसंगत हो सकता है, किंतु पुनः उस कार्य पर कार्य करने का कोई औचित्य नहीं बनता, जबकि ऐसा करने से पुनर्वृत्ति ही हो रही है। पृष्ठ संख्या 99। कई विषय ऐसे स्वीकृत कर दिए जाते हैं जो बहुत ही संकुचित होते हैं, जिन पर शोध निबंध तो लिखा जा सकता है किंतु शोध प्रबंध लिखना कठिन होता है, लेकिन जैसे तैसे करके उसे पूरा कर दिया जाता है। इसमें मूल विषय से संबंधित जानकारी न मिलकर अनावश्यक सामग्री उपलब्ध होती है। कुछ विषय ऐसे भी पंजीकृत कर दिए जाते हैं जो या तो असीमित होते हैं या फिर अत्यंत लघु। इन विषयों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि किस दिशा में विशेष कार्य किया गया है। जैसे राग पर शोध प्रबंध स्वीकृत हो चुका है। राग अपने आप में बहुत वांछनीय विषय है। शोध की दृष्टि से इसके विषय में कुछ भी दे दिया जाए तो कम पड़ेगा, क्योंकि राग के संबंध में संपूर्ण खोज कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकेगा। यह व्यवहारिक दृष्टि से मान्य नहीं है। अतएव एक व्यक्ति को इतना बड़ा उत्तरदायित्व दे देना कि निर्णायक समिति के लिए उचित नहीं है। इसी प्रकार जैसे राजस्थान के लोकगीत, यह विषय भी यह नहीं दर्शाता कि इसमें किस दिशा में कार्य किया जाए। लोकगीत संबंधी विषयों में लोकगीतों के संगीत पक्ष पर या साहित्य पक्ष पर इस संबंध में विषय कुछ नहीं बोलते। इन बातों से निष्कर्ष यह निकलता है कि विश्वविद्यालयों में संगीत पर शोध कार्य के लिए निर्णायक समितियों ने गंभीरता से अपने उत्तरदायित्व को निभाया है। शोधकर्ताओं की संख्या बढ़कर संगीत को अन्य विषयों से स्पर्धा योग्य बनाना ही उसका उद्देश्य अधिक रहा है, किंतु फिर भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर भी शोध हुआ है और हो रहा है, जिससे संगीत के प्रति शोध कार्य के योगदान को नकारा नहीं जा सकता।